ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्।
श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 5।
सवासनात्मा विषयो परक्तो गुण प्रवाहो विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत् पृथंग नाम अभिरूप भेदम् अंतरे बहिष्वं च पुरे स्तनोति।
शब्दानुवाद।
सह
वह कौन है? सह सह माने वह मन, मन है। वासनात्मा अनेक कामनाओं से युक्त, आत्मा मन विषय उपरक्त भौतिक सुख में अतिशय आसक्त, गुण प्रवाह सत्व रज अथवा तमो गुणों की शक्ति से प्रेरित, विकृता काम आदि से विरूपित, विकलांग। षोडशात्मा प्रमुख 16 तत्वों में से प्रधान तत्व, बिभ्रत भ्रमण करते हुए, सॉरी घूमते हुए, पृथक नाम भी विभिन्न नामों से, रूप भेदम विभिन्न रूप धारण करते हुए, अंतः बहिष्टम प्रथम कोटि अथवा निम्न कोटि का गुण, उत्तमता या अधमता, च तथा पुरे ही विभिन्न शारीरिक रूपों से तनोति प्रकट करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता है। इसी प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुखों के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सत्वगुण रजगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं मनुष्यों पशुओं तथा पक्षियों के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च तथा निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। तात्पर्य 84 लाख योनियों में देहांतर का कारण विशेष भौतिक गुणों से मन का दूषित होना है। मन के ही कारण आत्मा को सुख शुभ तथा अशुभ कर्म करने पड़ते हैं। इस संसार में बने रहना भौतिक प्रकृति की तरंगों के समान है। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है, मायार वसे जाच्छो भेसे खाच्छ हबु डुबु भाई। अरे मेरे भाई, आत्मा माया के अधीन है और तुम उसकी तरंगों में बहते चले जा रहे हो। भगवद गीता 3:27 में भी इसकी पुष्टि होती है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार द्वारा मोहित जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। भौतिक अस्तित्व संसार का अर्थ है भौतिक प्रकृति द्वारा पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति के आदेशों को अंगीकार करने वाला केंद्र मन ही है। इस प्रकार जीवात्मा कल्प कल्पांतर तक विभिन्न देह धारण करता रहता है। क्यों? कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। जीवात्मा द्वारा श्री कृष्ण के विस्मरण से ही यह प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 20वें अध्याय का 117 नंबर का प्यार। हरे कृष्णा। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम महापुराण भागवत के आश्रय में हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज रविवासर है, स्वाभाविक थोड़े भक्त लोग ज़्यादा आ जाते हैं और विषय भी बढ़िया है। ये वार्ता चल रही है राजा रघुवन एक महान भक्त और एक सिद्ध संत जड़ भरत के बीच। प्रसंग सब जानते हैं, उसकी पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा जा रहे थे प्रश्न करने के लिए किसकी शरण में जाना चाहिए, कौन हमें शरण देने योग्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। सभी के मन में ये सवाल जगते नहीं है। भवाप वर्गो भ्रमतु यदा भवेत जनस्य तरी अच्युत समागम सत्संगमो यही तदैव सदगतौ परावरेषे त्वयि जायते रति मतिः। अनंत जन्मों में अनंत अनंत योनियों में घूमते घामते जिनका अंतिम समय आ जाता है वही व्यक्ति सत्संग के लिए प्रेरित होता है और भक्त लोग संत लोग उसकी ग्रंथि को काटने में मदद करते हैं। तात्पर्य के अंतिम पर्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे दुख का कारण क्या है, व्हाई वी आर सफरिंग हियर। हम लोगों ने आध्यात्मिक मार्ग को चुना है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, प्रत्येक दिन नित्य प्रति भागवत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम जप मंगल आरती प्रातः से लेकर सायंकाल तक हमारे लिए हमारा श्रम केवल एक ही तरफ है, किस लिए है, क्या कारण है, किस लिए हम ये सब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हरि प्रीति तो आप ऊपर से कह रहे हैं, भीतर कुछ और कारण है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है और कोई उपाय नहीं है। उनकी पूंछ अगर नहीं पकड़ेंगे तो जन्म मृत्यु के सागर को पार करना मुश्किल है। देवता लोग कहते हैं वे मूर्ख है कि कुत्ते की पूंछ पकड़ करके सागर तैरना चाहते हैं। सोलांगुल है ना अतित्य तरति सिंधुम, कुत्ते कितना बड़ा तैराक होता है, थोड़ी देर जाएगा वही डूब जाएगा, उसकी पूंछ पकड़ने वाला सागर तर गया पार करेगा, और तालाब में ही डूब के मर जाएगा, सागर तो बहुत दूर की बात है। सो राजा अतिशय जिज्ञासु थे, प्रश्न करने जा रहे थे कि संसार सागर से कैसे हमको हमारी राहत हो, हमको रक्षा मिले। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। दो बात इस प्यार में स्पष्ट है कि हमारे दुख का कारण और कोई नहीं है, हम स्वयं है। ये तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। अनादि बहिर्मुख, अतएव इसलिए माया तारे देह संसार दुख। हमने कृष्ण को भुला दिया, और यदि हम दुख से उबरना चाहेंगे तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन क्या है। कृष्ण भूलने से अगर दुख होता है तो सुख का उपाय क्या है, सीधा सा अर्थ है कृष्ण स्मृति ही। हमने इसलिए कृष्ण हल में लगा रखा है, आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते, प्रसाद हल में कृष्ण स्मृति सर्व विपद विमोक्षणाम, सारा विपद सारी विपत्ति टल जाएगी यदि व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है। स हानि तत महाच्छिद्रम स मोह स च विभ्रम जन मुहूर्तम क्षण वापी न चिंतयति वासुदेवम। एक जीवात्मा का सबसे बड़ा नुकसान उसी समय को कहते हैं जिस समय वो कृष्ण को भूल करके बैठता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कृष्ण स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। तो इस स्मृति को जगाने के लिए क्या समस्या है, क्यों स्मृति नहीं हो पा रही है, तो इस कारण को खोजबीन कर रहे हैं जड़ भरत जी महाराज। राजा रघुगुण को बता रहे हैं कि राजा तुमने जो बात कही थी कि वो बटलुई वाली बात कही थी कि भाई परिश्रम होता है, परिश्रम शरीर को लगता है, फिर परिश्रम प्राणों को लगता है, फिर मन को, तो आत्मा को जरूर परिश्रम होता होगा। अकोविदो कोविदो बाद बादान बदस्य थो नाति विधाम वरिष्ठ। देखो संतों की डांट एक बहुत अनमोल वस्तु होती है संसार में। हम नहीं समझते हैं कि जिन्होंने बचपन में पिता माता की गाली नहीं सुनी कोई बड़ा आदमी बना है। संतों की डांट, भक्तों की डांट फटकार, पिता माता की डांट, ये जब पड़ती है वो जीवन में कल्याण करती है। प्रथम तो जड़भरत ने डांट लगा दी, अकोविदो कोविदो बाद बादान, मूर्ख की भांति बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, अध्यात्म के साथ भौतिकता का कोई संपर्क नहीं है। उस दिन मैंने कहा था हमेशा विरोधाभास रहता है। तो इस श्लोक में, पीछे के श्लोक में कहा गया कि हमारे दुख का कारण हमारा मन ही है। ये मनीराम जो है ना, ये बहुत ही नटखट है, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। कभी तो महान संत की भांति दिखाता है और कभी तो महाविषय जंजाल में ही डाल देता है। कभी पर्वत के समान है और अनंत लहरों के साथ ये भव सागर में हमको नचाता रहता है। सागर साथ है पर उसमें तरेंगे तो एक प्रकार की होती है, हाँ थोड़ी छोटी कोई बड़ी, लेकिन ये मनरूपी भव सागर में मन में हजारों तरंग और पांच रंग वाली तरंग उठती है। ये पंचरंगा तरंग है, ये तरंग एक रंग वाली नहीं है। कभी आपने देखा है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में तरंग लाल पीली होती है, और ये पंचरंगा है। कैसे, कभी रूप की तरंग, कभी शब्द की तरंग, कभी और कोई तरंग, कभी और कोई तरंग, ये पांच रंग है, पंच रूप रस गंध शब्द स्पर्श की तरंग है और अनंत 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 गुण है ये पंचरंगा तरंग। और कहां है सबासनात्मा विषयोपरक्तो गुण प्रवाहो विकृत सुन सात्मा। मन बिल्कुल वासनामय हो चुका है। व्याकरण में एक मैट प्रत्यय होता है, वो प्राचुर्य अर्थ में होता है या तादात्म्य भाव में होता है मैट। जैसे चारों ओर जल हो गया तो उसको कहेंगे जलमय, मन में कृष्ण आ गए उसको कहेंगे कृष्णमय। ऐसे ही मन में यदि वासना आ गई तो क्या कहेंगे, वासनामय। मन में केवल वासना ही वासना है, ये मन वासनात्मक हो चुका है। किस लिए, विषयोपरक्तो, अनेक जन्मों से विषयों का भोगते 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 तो उसके मन में विषयों के सिवाय और कुछ नहीं है। विषय मन, मन विषय। इसी को प्रह्लाद महाराज ने कहा था, पुनः पुनः सर्वित सर्वणा नाम। इसी को ही जड़ भरत ने पीछे कहा था, पिष्ट पेशहा, वो पिसे ही को पिसना, चबाए हो को चबाना, गुणों का बार बार विषयों का भोग करना, ये मन का एक स्वभाव हो चुका है। सब आसनात्मा विषयोपरक्त, विषय में उपरक्त, उपरोक्त नहीं है। ध्यान देना, संस्कृत में शब्दों का बड़ा ही सूक्ष्म रहता है। अगर हम विषयोपरक्त कह देंगे तो विषय से विरक्ति हो जाएगी। ये शब्द देखिए, विषय उपरक्त यानी कि वो विषयों में लगा हुआ है, विषयोपरक्त वासनात्मा, वासनामय और विषयों के प्रभाव में बहता हुआ चला जा रहा है। एक बात तो पक्की हो गई मेरे मित्रों कि हमारी मुक्ति और हमारे जो हमारा नरक बंधन, इसका कारण हम स्वयं ही है, हमारा मन ही है। अच्छा, अगर भगवान कृपा करते, सबको मुक्ति दिला देते तो सबको क्यों नहीं दे देते, एक सवाल खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। नहीं, प्रभु भी हमारे परिश्रम को देखते हैं। अरे जिसने अपनी मां को नहीं छोड़ी तुमको छोड़ देगा, नहीं छोड़ी। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः स्वमातुः स्विन्नगात्रायः, अपने माता को देखा, अपने माता के परिश्रम को देखा कि ये भक्त मुझे मेरी प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये भगवान किसी कमजोर आदमी को नहीं मिलने वाला है। तो कमजोर माने जाकर डेली जिम जाओगे, ऐसे ही करोगे। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, कमजोर व्यक्ति को नहीं मिलता। यहां बल क्या है, उपासना रूपी बल। भक्ति रेवेनम दृश्यति, भक्ति रेवेनम नयति, भक्तिवशः पुरुषः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये भक्ति का बल है, उपासना का बल है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात्, और प्रमादी व्यक्ति को कभी प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रमादी से प्रभु बहुत दूर है। प्रमाद माने कथा में आलस करना। कबीरा ये मन लालची, कबीरा ये मन लालची, ना समझे को तैयार। संत लोग पुराने शब्दों में ऐसे कहते, देखो ये इतना लालची हो गया और ये समझने को तैयार नहीं होता। राम भजन को आलसी, और एक में तैयार, भोजन को तैयार। भजन करने में तो आलस दिखाता है पर भोजन में बढ़िया। कुछ दिन पहले, अभी तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, जैसे 9 बजता था तो वहां से थाली गिरना शुरू हो जाता था। हाँ, पर ठाकुर जी ने ऐसा किया, जिन्होंने थाली गिराई उसकी थाल गिरा दिया और कोई नहीं गिरा रहा है। हमारा अनुभव इसी बलराम महल में क्लास होती थी, जैसे ही 9 बज जाएगा थाली गिरना शुरू हो जाएगा, तो सबकी थाल गिर गई। तो भजन, भजन पर बहुत ज्यादा महत्व होना चाहिए, कथा पर बहुत ज्यादा महत्व है। तो न च प्रमादात तपसो वापि अलिंगात, और तपस्या से भी प्रभु नहीं मिलेंगे अगर तपस्या सात्विक ना हो। रजगुणी और तमगुण से प्रेरित होकर जो तपस्या है उस तपस्या से प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। न प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात, फिर कैसे मिलेंगे? प्रोक्ति एतेर प्रोक्ति जस्तु जतति विद्वान, व्यक्ति को चतुर होना चाहिए, व्यक्ति को बुद्धिमान होने की बड़ी आवश्यकता है कृष्ण भक्ति में। यस्तु विद्वान तस्सी आत्मा विशते ब्रह्मधाम, उसी व्यक्ति को ये आत्मा प्राप्त हो जाती। इसलिए नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, कमजोर व्यक्ति प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। जोर माने भक्ति का बल, उपासना का बल। शुरू से प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक व्यक्ति थक जाए तभी तो होगा। इसलिए यहां कहा गया सवासनात्मा विषोपरक्त गुण प्रवाह, अनादि काल से सत्व रज तम गुणों के प्रवाह से आत्मा वो मन बहता हुआ आ रहा है। कितनी गंभीर बात है। अगर सचमुच हमारे शरीर में कोई रोग होता है, हम उसका निदान चाहते हैं, हम कितने गंभीर हो जाते हैं, 500 डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। पर ये भावरोग है। जब भी आप ये कक्षा में बैठोगे, यहाँ का प्रवचन करता प्रवक्ता कहेगा हम सब भवरोगी है। अरे क्या रोगी है, हम तो खाते पीते बढ़िया से जाते हैं आते, लिपस्टिक लगाते हैं, फेयर लिप लगाते हैं, रोग क्या है? रोग है जन्म मरण जरा व्याधि रूपी रोग है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयन, बारम्बार आना, बारम्बार मातृ कक्ष में जाना, बारम्बार दुख सहन करना, यही तो रोग है। बारंबार वक्ता इसी पर ही फोकस करता है। पर इन सब का कारण क्या है, जड़ क्या है? क्योंकि मन में वासना है। वासना कहां से उत्पन्न होती है? भोगों से होती है, विषय की उपरक्त से होता है, वो उत्पन्न हो जाती है। ये विषय कहां से आता है? गुण प्रवाह से। ये संसार का एक नियम है, यही तो है षोड़श आत्मा। 16 वस्तु क्या क्या है? बोले 10 इंद्रिया, 11वां इंद्रिय मन राजा, और 5 महाभूत। 11, 5, 16। इसलिए मन को षोड़श आत्मा कहा गया क्योंकि मन ये 16ों का राजा है। मन 16 कला वाला है। भगवान ने जो पुरों की रचना करी वो भी षोड़श षोड़शात्मकम उन्होंने कहा। भगवान ने भी यही जो पुरी बनाई इसमें 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्रा हैं, 10 इंद्रियां हैं, इनको षोड़शात्मक कहते हैं। सो मन इन 16 तत्वों का जो राजा है, यही विभ्रत पृथक नाम भी रूप भेदी। विषयों का प्रभाव कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजगुण कम हो जाता है, कभी रजगुण बढ़ता है, कभी सत्व तमगुण दब जाते हैं, ये बाध्य बाधकता को प्राप्त करते हैं। कभी सत्वगुण प्रबल होता है तो रज तमगुण नीचे दब जाते हैं, कभी रजगुण प्रबल होता है तो सत्वगुण तमगुण नीचे चब दब जाते हैं, कभी तमगुण प्रबल होता है तो सत्व रज नीचे दब जाते हैं। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, ऐसा क्यों होता है? भगवान प्रत्येक प्रति संभाव रखने वाले हैं, सबके हितैषी हैं, सबके सुहृद हैं, पर देखा जाता है इंद्र के पक्ष लेकर सब असुरों को मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा ऐसा सब नहीं है, तुम जैसे पूछते हो इसका, ऐसा भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। फिर क्यों होता है? बोले जब सत्वगुण बढ़ता है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, जब रजगुण बढ़ता है तो असुरों का पक्ष लेते हैं, जब तमगुण बढ़ जाता है तो यक्ष राक्षसों का पक्ष लेते हैं। इसमें भगवान की निष्पक्षता सिद्ध होती है, इसमें भगवान का असमता कहीं इसमें नहीं है। तो इस श्लोक में कहा गया षोड़श आत्मा विभ्रत प्रथम नाम भी। कभी कभी तो मन के कारण व्यक्ति बहुत ऊंच लोक में देवता बनता है, अहम देवा, अभिमान हो जाता है, और इसी मन के कारण कभी निकृष्ट जोनी में जाता है, कीड़ा बन जाता है। वो कीड़ा ही कहता है अहम सुकर, मैं स्वर हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं गधा हूं, मैं बिली हूं। इसी प्रकार से मन अपनी पहचान बनाता है। कितने खेद की बात है मेरे मित्रों, कितने खेद की बात है। और चाबी हमारे पास ही है। इस कथा का निष्कर्ष यही होगा कि चाबी हमारे पास है। बिभ्रत प्रथम नाम भी रूप भेदी भेदम अंतर बहिष्ट च पुरेस्तनोति। ये मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल भगवान से जब उनकी माता श्री ने पूछा, पुत्र हम आपकी शरण में आए हैं, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दो, तुरंत कपिल भगवान देर किए बगैर कहते हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम रतंबा गुणेशु शक्त बंधाय रतंबा पुंसी मुक्तये। हे मां, ये चित्त जो है, ये वासनात्मक चित्त है, यही चित्त मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। जीवात्मा के बंधन और मुक्ति का कारण हमारा ये चित्त है। तो मानो मां पूछेगी, बंधन का क्या कारण है? बोले गुणेशु शक्त बंधाय। बोले जब तक विषयों का भोग करता रहेगा तब तक उसके बंधन की वेड़ी खुलेगी नहीं। ये हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, मैं कह रहा हूं ये नियम हमारे लिए लागू नहीं है, ज्यादा लागू है। जब तक हमारे मन में विषयों का भोग, विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी तब तक हमारे पैरों में बंधन की वेड़ियां रहेगी, उसको कोई नहीं काट सकता। कावा विमुक्ति विषय विरक्ति, आदि शंकर ने कहा। बोले मुक्ति क्या है? बोले विषयों से विरक्ति, सीधा सीधा अर्थ है। सो मन का जो विषयों में आसक्त होना रतम बापुंसी मुक्त है। और वही चित्त जब इस किसी संत के साथ जुड़ जाता है वो हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। वही मन, एक ही मन है। चाबी को राइट घुमाने से ताला खुलता है, चाबी को बाएं घुमाने से ताला बंद होता है। पर एक बात तो हमारे लिए मित्रों स्पष्ट हो गया कि हमको ही गंभीर होना पड़ेगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि हम ही अपने बंधन मुक्ति का कारण बन गए। अन्यथा क्यों ये उपदेश करते कि राजा तुम्हारा मन वासनामय हो गया, तुम्हारा मन विषयासक्त हो गया, गुण प्रभाव से विकृत हो गया। विकृत माने विकलांग, विकारी हो गया, परिवर्तनशील हो गया। ये कभी सुख कभी दुख कभी कुछ, विकारी माने परिवर्तनशील है। कैसा परिवर्तन? इतना बड़ा परिवर्तन आप सोच भी नहीं सकते। क्या परिवर्तन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन सर्व ज्ञान ज्ञानमय आनंदमय जीवात्मा आज क्या सोच रही है? आज सोच रही है, हाय हाय कितना दुख हमको हो रहा है, इस शरीर का बंधन है, जन्म जरा बुढ़ापा, जन्म दुखम जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाल महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि, भगवान बुद्ध ने कहा है। बोला अरे भाई, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, पत्नी भी दुख है, तुम्हारा अंतकाल भी दुख है, इसलिए थोड़ा उठ के खड़ा तो हो जाओ, थोड़ा इस पर विचार तो करो। तस्मात् जागृहि जागृहि, यही ऋग्वेद का मंत्र कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यो वरान्निबोधत। तो उठ के खड़ा होना माने क्या है? जिस विचार के स्तर पर तुम रहते हो खान पीने के चक्कर में, वहां से थोड़ा हट के विचार करो। क्यों हमको बारंबार दुख होता है? क्यों हम ये पीछे, ये चक्की में पीछे चले जा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। किसी संत के पास जाओ, किसी श्रेष्ठ वरिष्ठ ज्येष्ठ के पास जाकर इसकी जिज्ञासा करो। वेद माता ये कहती है। इसलिए इस मार्ग में कितने गंभीर होने की आवश्यकता है। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। विकृत हो गया, जन्म मृत्यु से रहित जीवात्मा आज जन्म मृत्यु के जंजीरों में ना जाने क्या क्या करता है। कभी सुकर कुकर बनता है। बताइए, हमको आज हलवा भी अच्छा नहीं लगता, यदि हम कुत्ते बन जाएंगे क्या खाएंगे, क्या खाओगे? और होगा, ये सत्य है, हम सब खा पी करके आए होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 84 लाख योनियों का भ्रमण किए, कीड़े मकोड़े कुत्ते गधे बिल्ली तो बने होंगे ना, बने होंगे जरूर। आज की स्थिति से हम विचार करते हैं, आज के मन में अगर हमारे विषय हैं तो पीछे कितना विषय नहीं होता होगा, कितना खेद ये, कितने दुख की बात ये। विकृत हो गया, विकारी हो गया, विभ्रत प्रथंग नाम भी, तरह तरह के नाम रूप वाला हो गया। इसलिए मेरे मित्रों, ये आध्यात्मिक भाव, ये आध्यात्मिक अर्थ इतना गंभीर है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। और केवल सुनने से ही जाएगा। यथाव रुंधे सत्संगा सर्व संगो संगा पहो ही माम, भगवान ने कहा ये सारी चीजें सत्संग से ही आसान हो जाएगी। मन का विषयों से हट जाना, मन का कृष्ण में लग जाना, ये सारी चीजें सत्संग से ही संभव है, कथा के द्वारा ही संभव है। जो व्यक्ति कथाओं के प्रति जितना आसक्त है वो व्यक्ति उतना ही विरक्त होता चला जाएगा। देखिए, कोई स्वस्थ सबल पुरुष है और उनकी पत्नी अच्छी है, दोनों का विवाह हो गया, अगर उसकी संतान नहीं हो रही है तो उस स्त्री पर क्या दोष लगेगा? हाँ, बंध्यात्व का दोष लग जाएगा, बंध्यात्व का दोष लगेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर पुरुष ठीक है, स्त्री बढ़िया है, दोनों का विवाह उपयुक्त विधि से हुआ है, अगर निर्दोष फिर भी प्रजनन संभव नहीं हो रहा है तो स्त्री के ऊपर बंध्या का दोष लग जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, भक्ति यदि हम दीर्घ दिन तक करते आ रहे हैं, संस्था अच्छी है, कथा अच्छी है, ग्रंथ अच्छा है, मंत्र प्रबल पराक्रम वाला है, फिर भी यदि हमारे मन में विरक्ति नहीं आ रही है तो हमने भक्ति पर बंध्या का दोष लगा दिया। ये जिम्मेदार किसका है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है। उनके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वासना से रहित हो जाएगा, विषयों से उपरत हो जाएगा। ये जो विषय उपरक्त लिखा हुआ है, विषय से उपरत हो जाएगा, वो वैराग्य हो जाएगा। हमारे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। कैसे होगा? भगवान ने कहा, तथा दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। यहां भी बुद्धिमान, बुद्धिमान को चाहिए, जो व्यक्ति जान लिया कि मेरा मन निराम ही सब कुछ बखेड़े का ये जड़ है, तो तब वो क्या करेगा? ततः दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। संत इवास्य छंदंती मनोव्यासं उक्ति भी। संत प्रवचन करेंगे और अपने ओजस्वी वाणी के द्वारा उनके हृदय के बंधन को काट काट करके फेंक देंगे। कथा ही एकमात्र भवभेषज है। कथा भेषज, पुरुषोत्तम मास आ रहा है, पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, तो ये तीन वर्ष में एक बहुत बढ़िया अवसर मिलता है कथा का। तो मीटिंग में फाइनल हुआ है, पूरी भागवत कथा इधर होगी, संपूर्ण भागवतम प्रथम स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक, अंतिम तक, जन्मादस्य से लेकर नाम संकीर्तन तक, और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। झट करके खाओ, पट करके यहां आ जाओ, प्रसाद पाओ। अब प्रसाद बढ़िया बनेगा, 2 बजे चकाचक प्रसाद पा करके जाओ, और नियमित रूप से डेली 10-10 अध्याय, एक ये कि महाव्रत हो जाएगा। पुरुषोत्तम का मास है, वृंदावन का धाम है, कृष्ण बलराम का प्रांगण है, राधा रानी की आंचल है, उसके नीचे भागवत कथा का रसास्वादन है, फिर रसास्वादन का प्रसाद सेवन है, और क्या बचेगा? हमारे कैमरा वाले तैयार है, सब भक्त तैयार है। पंकज जी है? पंकज जी नहीं है, पर स्पॉन्सर नहीं हुआ है। प्रसाद के लिए हम चाहते हैं कुछ व्यक्ति आ जाए, 1 महीना का प्रसाद होगा, डेली 5-5 हजार हो जाने से काम हो जाए, 1.5 लाख रुपया अगर हो जाए तो इससे प्रसाद की व्यवस्था बड़ी सुखपूर्वक हो जाए। है सबके पास है? हाँ, डेली 5 हजार तो आपके लिए कर दें 1.5 लाख। अरे भाई, 1 लाख दे दीजिए। देखिए, पुरुषोत्तम महीना कब, ये जीवन कब चला जाए क्या पता है, हो सकता है कि हम नहीं कह पाएंगे, आप नहीं सुन पाएंगे, या तो आप सुनेंगे हम नहीं कह पाएंगे, तो पुरुषोत्तम का हाँ क्या दिक्कत है? संत कथा का मिलना और प्रसाद का देना, अभी बोल दो तो अभी मैं हरिबोल कर दूंगा, अभी दिया नहीं तभी हो जाएगा काम। चलो हरि बोल। देखिए संत कितने उदार होते हैं, बिना दिए इतना आशीर्वाद, जब देते रहोगे तो रोज रोज आशीर्वाद का झरा भंडारा चलेगा। चलो माता जी के नाम में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देखिए हम लोग का प्रिंसिपल नारद जी का है, मांगते तो वहां मांगते हैं जहां जवान बेकार ना हो। ऐसे लोगों के पास झोली क्या फैलाए, कथा तो हो रही कि भाई इस व्यक्ति की शरण में जाओ जो शरण ना ठुकराए। और दो व्यक्ति को हम नजरों से ढूंढ रहे थे, पंकज गुप्ता कहां चले गए, उनके ऊपर 1,00,000 का जुर्माना और एक भक्त हमारे अर्जुन हरि प्रभु, बस 3,00,000 हो गया डेली 10,000 रोज हम खिलाएंगे रसगुल्ला रोज। सो कथा है, सबके मन में विषय है, ये विषय कैसे छूटेगा चिंता मत करो, अचानक ये नहीं छूटेगा ना। जो व्यक्ति रोज 10-10 घंटा सोता है उसको अचानक हो कि तू 2 घंटा सो, वो तो पागल हो जाएगा। वो कहेगा महाराज जी भक्ति भक्ति हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी जब गए थे वहां, सब लोग को जानते हैं कि भाई उनके ऊपर अगर 4 नियम की पाबंदी फटाफट लगा दिया जाए आदमी पागल हो जाएगा। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सनई सनई, तो इसका उपदेश इसका जो तौर तरीका भगवान ही बताते हैं उद्धव से। उद्धव तुम चिंता मत करो कि तुम्हारा मन विषयों में बहुत ज्यादा आसक्त हो गया, पर उनके लिए भी उपाय है। बोले क्या करना चाहिए, जात श्रद्धा मत कथासु निर्वीर्ण सर्वकर्मसु, मेरी कथा में तुम डूब जाओ, इसलिए मैं कथा को इतनी प्रधानता देता हूं। आप ईमानदार, ऐसी मैं बात नहीं कह रहा हूं, बचपन से जब हम सुनते थे हमारे गांव में कहीं भी सत्संग होता था मैं जाता था। आज भी आप हमारे गांव में चले जाओ, गांव में हमको 2 नाम से पुकारा जाता है, या तो कुछ लोग मास्टर मास्टर कहते हैं या तो कुछ लोग बाबा बाबा कहते हैं, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते थे, हमने टीचर ट्रेनिंग ली थी, इसलिए लोग 2 नामों से हमको जानते हैं, या तो बाबा जानते हैं या तो मास्टर जानते हैं। जहां कहीं भी सत्संग होता था, ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर, जात श्रद्धा मत कथा सो निर्वीर्ण सर्व कर्म सो। अरे भाई दुनिया में तमाम काम है, इतने काम करते करते तुम्हारा भवबंधन नहीं छूटा, फिर वही काम करोगे, क्यों करोगे। जात श्रद्धा मत कथा सो निर्वीर्ण सर्व कर्म सो, अब बहुत हो गया, जो हो गया सो हो गया, मन के हारे हारे है मन के जीते जीत, मन ही मिलाव सो राम सो मन ही करे फजीत। ये मनीराम जो है इतना दुष्ट है, वो तो कई पहाड़ बन जाता है कभी और नीचे आ जाता है चट्टान में। इसलिए भगवान ने कहा जात श्रद्धा मत कथा सु निर्वीर्ण सर्व कर्म सु वेद दुखात्मकान कामान, जानते हुए भी ये सारा काम दुखदाई है परित्यागे भी अनिश्वर। हम जानते हैं कि मीठा खाना अच्छा नहीं है, हम डायबिटीज के पेशेंट है, फिर भी रसगुल्ला दिखने से हमारी जीवा में लार आ जाती है। इस कमजोरी को कृष्ण जानते हैं, क्योंकि वो हमारे सुहृद है, वो हमारी हितैषी है। चक्रवर्ती जी कहते हैं सहृद सहृदय से कथम असौहार्द्यम, जो व्यक्ति सुहृद है उनके भीतर असौहार्द कैसे आ सकता है। प्रियसु कथम प्रिय भाव, जो सबके प्रिय है उसमें प्रियता का अभाव कैसे हो सकता है। तो कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, मैं जानता हूं, क्योंकि वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेपि अनिश्वर। हम जानते हैं कि मंगल आरती में आना जरूरी है, लेकिन शरीर व्याधिग्रस्त है, आपका अभ्यास पहले से नहीं है, आप उठ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल जानते ये बिल्कुल जीवन डेली टू डेली वो प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, जानता है कामनाओं के कारण कर्मों के कारण हम दुख में फंसे हुए हैं। अनेक दिनों से भागवत कथा सुनते आ रहे हैं, गीता सुनते आ रहे हैं, संतों के प्रवचन सुनते आ रहे हैं, लेकिन परित्याग भी अनिश्वर, अनिश्वर माने वो समर्थ नहीं हो पा रहा है, विषयों को छोड़ नहीं पा रहा है। क्या करना चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं ततो भजेत माम प्रेता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। दो काम करनी पड़ेगी, तो जितनी श्रद्धा हमारे में है हमारी श्रद्धा को और बढ़ानी पड़ेगी, यह भी हमारे पर डिपेंड करता है। इसलिए हम बार बार देते हैं आप कथा सुनो, बारंबार सुनो, जाता श्रद्धा ततो भजेत। इसलिए जब देखा कि हमसे यह काम संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको संकल्प करना पड़ेगा, माम प्रीता, हमारे प्रति प्रीति उनको बढ़ानी पड़ेगी, भक्तों के संग में बारंबार आना पड़ेगा। ततो भजेता माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, उसको थोड़ा सा दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। जो समानस तान कामान, और उसी काम को करे, रसगुल्ला खाए लेकिन मन में ही मन कहे बेकार की रसगुल्ला है, इसमें कुछ नहीं है। देखो खाए मन में, यदि कोई स्त्री को परित्याग नहीं कर पा रहा है तो स्त्री के साथ रहे लेकिन कम से कम स्त्री के सामने ना कहे, मन से तो कहे बेकार की चीज है। कितनी गहरी बात, गोपनीय बात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जुस मानस तान कामान, उन्हीं कर्मों में उन्हीं भोगों में लिप्त रहते हुए भी दुखों दरकांश गर्हयन, उसको ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये सब दुख के उदर का है, यानी कि यही काम दुखों के कारण है, दुखों की योनियां है। भगवान ने भी कहा है विषयों का भोग ये दुखों का आगार है, दुखों का स्रोत है, गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया। तो यद्यपि हम असमर्थ है, कर नहीं पा रहे, पर थोड़ी सी चीज है कि हमको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। अगेन बारंबार आज हम कथा दो एक घंटा सुनते हैं, दो घंटा पांच घंटा सुनेंगे, पुरुषोत्तम महीने में कंटिन्यूअस तीन घंटा सुनोगे, कहां समय आएगा, कहां फुर्सत है हमारे पास। तो जात श्रद्धा ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, जुष्मानस तान कामान दुखो दरकान से गरिहन। हमारे मित्र लोग, कई लोग आ रहे हैं पंजाब से, इससे तो आप दुखी मत होना कि हम ये काम छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये भोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर मन ही मन कम से कम उनकी निंदा करो। अगर मन ही मन अच्छा मानोगे तो फिर आपकी वितृष्णा कैसे सिद्ध होगी। तो कृष्ण कहते हैं मन से उनकी निंदा करो तो उससे क्या परिणाम होगा, परिणाम यही होगा कि प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मासकृत मुने। जैसे मैंने बताया ये भक्ति योग के द्वारा यदि मासकृत, ये मासकृत माने एक मास के लिए नहीं है, मासकृत माने बारंबार करना चाहिए। कब तक करना चाहिए, पिबंत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूमि भावुका, कब तक पिए, बोले जब तक हमारे जन्म मृत्यु का प्रभाव खत्म ना हो जाए तब तक पिए, तब तक ये पान ये रस को पीते रहे। तो कहते हैं प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मासकृत मुने है, तो परिणाम क्या होगा, ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है विषो परक्त वासनायात्मा गुण प्रवाह विकृत षोड़शात्मा, श्री कृष्ण कहते हैं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या होगा, कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मई हृदय स्थिते, जब तुम भजन करके रो रो करके हमको पुकारोगे तो तुम्हारे कर्ण छिद्र से होकर के जब मैं आकर के तुम्हारे दिल में विराजमान हो जाऊंगा, एक काम रूपी पक्षी सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। एक संत ने कहा, किसने देखा, जहां बाज पंक्षी का बासा होता है, उसका घोंसला होता है, वो आजू बाजू में कोई पक्षी नहीं रहते, क्योंकि वो जानते हैं बाज हमारा शिकार करेगा, इजंट इट। जहां बाज पक्षी घोंसला बनाता है उसके आजू बाजू में कोई परिंदा घोंसला नहीं बनाता, वो जानता है कि हमारा शिकार करके खा जाएगा। इसलिए कृष्ण रूपी बाज पक्षी जब हमारे दिल में बैठेगा, कोई छोटी छोटी चिड़िया बैठेगी नहीं, घोंसला नहीं बैठेगी, नहीं करेंगे, नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समाय, भरी सराय रहिम लखी आप पथिक फिर जाय। सराय माने धर्मशाला, सराय में रहने के लिए राही आता है पर पूछता है धर्मशाला में जगह है खाली है, यदि उसको कोई सूचना देता है कि भाई धर्मशाला तो बिल्कुल फुल है तो धर्मशाला तक नहीं जाता है, वो वहीं पीछे से दूसरी जगह चला जाता है। तो हमारी ये चित्त ये 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 तो पंचरंगा धर्मशाला है भाई, ये पांच रूप रस गंध वाला ये पंच वाला है ये धर्मशाला, पर ये धर्मशाला में जब हमारे प्रभु आ जाएंगे मन के मनमोहन तब ये सब कहां रहेंगे, आप पथिक फिर जाए, वो काम क्रोध लोभ मोह सब निकल जाए। इसी को ही कृष्ण कहते हैं कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मई हृदय स्थिते। सुखदेव गोस्वामी ने अंततः तो यही बात कहा था, विद्या तपो प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जपहि नात्यंत शुद्धिम लभते अंतरात्मा यथा हृदय स्थे भगवत अनंते। तुम्हारी विद्या, तुम्हारा जप तप, तुम्हारा छत्रवास, ये सब निष्फल हो जाएगा अगर हम हरि को हृदय में बसाने में असमर्थ हो गए। बोले हरि कैसे बसेगा? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम और ध्यान एक साथ चलेगा। इसी श्लोक की बाद ही कहे कलिर दोष निधे राजन यस्तिय को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इसी श्लोक के बाद कहा गया। इसका मतलब यही हुआ कि चित्त में मन में मन मोहन को बिठाना बहुत आवश्यक है। कैसे बसेगा? यही है कि कामा हृदया नश्यंती सर्वे मई हृदय स्थिति प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलाने कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जैसे शरत ऋतु के आने पर जलाशय अपने आप में शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे हमारे मनमोहन जब हमारे मन में प्रविष्ट हो जाएंगे हमारा मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ये विशेष भाव है। इसी को भगवान कहते हैं भिद्यति हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षयन्ति चास्य कर्माणि मई दृष्टि अखिलात्मनि। जब अखिलाधार हमारे प्राणाधार रास रासेश्वर गोपेश्वर गोपियों के प्राणधन हमारे चित्त में विराजमान हो जाएंगे फिर हमारी सुख की सीमा कौन बता सकता है। तब हम कृत्य कृत्य हो जाएंगे। जो मामैव संमूढो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित भजते माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो मुझे पुरुषोत्तम को जान लेता है वो सब प्रकार से सब भांति मेरा ही भजन करता है। राम उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तजी भावना आना। इसलिए हम सबसे करवत निवेदन करना चाहते हैं पुरुषोत्तम मास में आप सब आइए, या कथा का आनंद लीजिए, प्रसाद पाइए और पुरुषोत्तम महीना में भगवान पुरुषोत्तम को अपने प्राण में अधिष्ठित करते आप अपने स्थान पर जाइए। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।